Owner.
سلام حاجی صاحب.
وعلیکم السلام بیٹی، خوش آمدید.
بہت بہت شکریہ، عبادات قبول ہوں آپ کی. آپ کیسے ہیں؟
خدا کا شکر ہے. آؤ بیٹھ. آؤ
جی بالکل، آپ بھی بیٹھے.
ہاں یہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھو. بہت دنوں سے ہمارے اپنے مدرسے میں تم آتی نہیں ہو بیٹا. میں اکثر و بیشتر تمہیں یاد کرتا ہوں بیٹا.
صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں میں نہیں آ پائی کیونکہ میں بہت رش میں پھنسی ہوئی تھی. وکالت کا کام اچھا نہیں ہے.
کوئی کام بھی برا نہیں ہوتا، بالخصوص تمہارا پیشہ تو لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے بیٹا. ناشکری نہ کرو بیٹا.
خدا نہ کرے کہ میں ناشکری ہوں کبھی، بس ایسی بہانے بنا رہی تھی نہ آنے کے.
تمہاری جگہ ابھی بھی خالی ہے. اتفاق سے رحمانی بیگم ایک دو ہفتے پہلے چاہتی تھیں کہ وہ مقالہ جس کا نام ہے عورت خدا کی بے پایاں رحمت ہے، اس کی نمائش پچھلے ہفتے ہوئی تھی، وہ چاہتی ہیں کہ اس کو چھپوا دیں. وہ تم سے اجازت لینا چاہ رہی تھی لیکن تم کو اتنے فون کیے لیکن کوئی جواب ہی نہیں آیا.
جی ہاں، بہت دنوں سے میرا ٹیلی فون خراب ہے. بات یہ ہے کہ میرے سر پہ مصیبت آ گئی ہے حاجی صاحب، جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے.
کیا ہوا؟ کیسی مصیبت؟
میری بہو معصومہ کا انتقال ہو گیا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ہمیں کیوں نہیں بتایا؟
شرمندہ ہوں میں. ان دنوں میرا حال بہت زیادہ خراب تھا، میں اپنے حواس میں ہی نہیں تھی.
انشاءاللہ اس آیت پر اترتی ہو، لا یرزقون فیہا الموت الا الموت طول است، اور اس موت کے علاوہ اور کوئی دوسری موت نہیں آئے گی.
مجھے پورا یقین ہے حاجی صاحب کہ میری معصومہ فرشتہ تھی. آپ کو پتا ہے کہ میں اس سے کتنی قریب تھی؟
ہاں مجھے پتا ہے. میرے خیال میں 2 سال سے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی نا، صحیح ہے نا؟
3 سال سے.
اتفاق سے اس دوران کئی بار تمہاری باتیں ہوتی رہیں، ہر کوئی تمہارے صبر کی مثال دے رہا تھا. تکلیف جو تم نے اٹھائی، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہیں ان ساری تکالیف کا اجر و ثواب ضرور ملے گا. خدا فرماتا ہے کہ وہ مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خریدتا ہے. یقیناً وہ وہاں خوش ہوگی. خدا تمہیں صبر دے.
اتفاق سے میں یہی بات کرنے آپ کے پاس آئی ہوں. معصومہ کی موت نے جیسے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے. اس سے اتنی رغبت اور محبت ہو گئی تھی کہ مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا. اس کے غم میں اتنا روئی اور بے ہوش ہو گئی کہ لوگ مجھے ہسپتال لے گئے. یہاں تک کہ اس کے دفن کے بعد بھی میری حالت ٹھیک نہیں ہوئی. میرا شوہر میری وجہ سے بہت پریشان ہے، حتیٰ کہ میں خود بھی بہت پریشان ہوں. پھر ایک دن جب میں قرآن پڑھ رہی تھی تو اور اس آیت تک پہنچی، ما اصابہ مصیبت للہ باذن اللہ ومن یومن باللہ یہدی قلبو. میرا دل ٹوٹ گیا. خدا کی قسم میں جو ایمان رکھتی ہوں تو اس مصیبت میں آرام کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں میرے دل کو سکون نہیں مل رہا؟ اس رات کے بعد مجھے بے حد آرام آ گیا، بہت زیادہ. اور خدا نے اس رات مجھے صبر و تامل و سکون قلب عطا فرما دیا. اس نے مجھے اگلے دن میں معصومہ کی قبر پہ گئی، اور جس وقت میں وہاں سے واپس آ رہی تھی ٹرین پر، میٹرو میں تھی تو دیکھا کہ ٹرین بجائے پٹری کے ایک باغ میں چل رہی تھی. के सब किसी चीज के इंतजार में थे। पता नहीं उनकी नजरें आसमान पर थी। बहुत ड्रामा मंजर था हाजी साहब, लेकिन हाजी साहब सबसे ज्यादा ड्रामा मेरे शौहर का चेहरा था वहां पे। उनकी आंखों में तशवीश और चेहरे पे परेशानी थी। नहीं वो कौन सी जगह थी, और वो लोग जिनको फॉलोज हुआ था तो अचानक किस चीज के इंतजार में थे। वो नूर जो आया उनमें से काफी को अपने साथ ले गया, वो क्या था? इसके अलावा बहुत से सवाल मेरे दिमाग पे चल रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं है मेरे पास। इनमें सबसे बुरा सवाल ये है कि मेरा शौहर हाजी रजा क्यों उनके दरमियान थे, और आखिर वो इतने परेशान क्यों नजर आ रहे थे? कल रात से अभी तक एक एक लम्हा गिन रही थी कि सुबह और जल्दी से आपके पास पहुंचूं, ताकि इन सवालों के जवाब ले सकूं।
शायद जो मैं कहने जा रहा हूं वो जवाब है तुम्हारे उन तमाम सवालों का। वो ये है कि तुमने एक बहुत बड़ा दुख और एक सख्त मुसीबत अपने ऊपर से गुजारी। वो चीजें जो तुमने देखी मुमकिन है कि उन हादसात के असरात हों। जो कुछ हुआ है ऐसा होता है।
इन चीजों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं वहां मौजूद थी, वो बाग था, वो सहरा था। जैसा कि मैंने कहा, न ख्वाब था न ख्याल था और न ही वहम था।
यानी ये कहना चाहती हो कि वो एक तरह का मुकाशफा था?
पता नहीं हाजी साहब, पता नहीं उसको क्या नाम दूं। सिर्फ इतना पता है कि वो सब हकीकत था।
अलबत्ता इस तरह के इल्हामात और मुकाशफात के मुद्दई दुरुस्त होते हैं, और एक तरफ बकौल इमाम खुमैनी के अहले रूहानियत और मानवियत का इनकार नहीं, मगर ये बातें असल वजूद के साथ रवा नहीं रखती। लेकिन दूसरी तरफ तुमको पता है कि इन बातों के जरिए कितने लोगों ने इससे इस्तेफादा किया और खल्क़े खुदा की गुमराही के असबाब फराहम किए हैं और कर रहे हैं, और इत्तफाकन इन गैबी बातों के मुद्दयान इसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। एक मशहूर कौल है कि इतना सादा ना बनो कि जहन्नम की आग के मुस्तहक बन जाओ।
लेकिन मेरा सोच इस्तेफादा
मेरा मतलब तुम नहीं हो नरजिस बेगम। देखो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि मैं तुम्हारे मराते हुए इल्म और तकवे से आगा हूँ, यानी जो यकीन कलवी और अकली मुझे है कि तुम उस गुरोह से नहीं हो। खुदा की इनायत से सबसे पहले जरूरी है उन सब मुकाशफात के लिए तुमने अपनी लंबी उम्र इबादत और तहसीर इल्म में गुजारी है, और कई सालों तो तुम फलाही और सामाजिक कामों में मसरूफ रहीं, तो जरूरी नहीं कि तुम पर खुदा की इनायत न हो। लेकिन इस तरह के मुशाहिदा तो मुकाशफात एक फर्दी बात है। दूसरों से तवक्को न रखो, किसी से कोई तवक्को नहीं, और ना ही उनकी बातों और दलीलों पे यकीन करो। वो लोग जो खुद इस दुनिया का तजुर्बा कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो फर्ज है वो ये है कि उन मुशाहिदात को जो तुमने किए हैं किसी को ना बताओ।
जानती हूँ हाजी साहब, सही कह रहे हैं। मैं खुद के साथ बहुत कश्मकश में हूँ कि किसी को ये सारा मुजरा सुनाऊं। लेकिन आखिरी बार जब रजा को मैंने वहां इतने बुरे हाल में देखा तो मैं खुद पर तामुल काबू ना रख सकी। सोच रही थी कि आऊं और आपको बताऊं, क्योंकि जो चीजें मैंने वहां देखी है मेरा ईमान है कि आप सही सही बता सकते हैं कि उन सब चीजों की हकीकत क्या थी। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए हाजी साहब।
मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम फिलहाल जो इलामात और वाकयात तुमने देखे हैं किसी को ना बताओ। दूसरे ये कि कोशिश करो कि इस बारे में बिल्कुल ना सोचो और उन ख्यालात को अपने दिमाग में बिल्कुल ना आने दो, और खुद को तलखीन करो कि जो कुछ तुमने देखा वो एक ख्वाब था और इसको भूल जाओ बेटी।
ठीक है, जिस तरह आप कहें, लेकिन हाजी साहब सिर्फ इतना बता दे कि वो जगह कौन सी थी। क्या वो जगह जन्नत थी या कि जहन्नुम?
तो तय हुआ कि इस बारे में नहीं सोचोगी।
सोच रही हूँ यहाँ कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक गंदी दुनिया और एक घटिया बाप। तुम यहाँ आना चाहते हो क्या? तुम भी अपने बाप के जैसे बनोगे क्या? ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। ये नहीं होगा, तुम नहीं आओगे, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी। मुझे माफ कर दो, तुम सलामत रहो, मैं कुछ नहीं होगा।
कितने महीने का है?
मुझे नहीं पता।
तुम्हारे ग्लास गंदे हैं फरीदा जान, इंसान को कब धोकर चाय पीना चाहिए? तुमने नहीं धोया, मैंने धो दिया। अच्छा लड़का है या लड़की है?
मुझे नहीं पता।
खुदा करे कि लड़का हो।
क्यों?
अगर तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ तो एक रोज मर्द बनेगा, एक मर्द जो खुद मुख्तार होगा, तुम्हारा सरमाया होगा। अगर तुम्हारे घर लड़का हुआ तो वो तुम्हारा होगा, वो तुम्हारी बेहद इज्जत करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें चाहेगा, तुम्हारी औलाद होगा। तुम खुद उसे पाल पोस कर बड़ा करोगी अपना इंतकाम लेने के लिए। उसको तुम अच्छी तरह दिल लगा कर पालना। अपनी औलाद अपनी होती है। मुबारक हो फरीदा, खुदा करे लड़का ही हो। मुझे खाला बोलो बेटा, मैं इसकी खाला हूं। तुम्हें बेटा पैदा करना होगा फरीदा, समझी तुम? अगर बेटा हुआ तो आखिरी उम्र तक उसका साया तुम पर रहेगा। इसमें और इसके बाप में जमीन और आसमान का फर्क होगा। ये जरूरी नहीं कि बेटा बाप जैसा हो।
माफी की क्या बात है यार, मैं तो चाहता हूँ आपका काम हो जाए बस। आ रही है।
आ रही है? क्यों नहीं आएगी?
खुदा करे नहीं है।
शर्मिंदा मत हो मसूद,
लेकिन फरीदा को छोड़ने की इतनी बड़ी कीमत नहीं हो सकती। ये हल नहीं है इसका।
और कोई हल नहीं है मेरे पास।
हल ये है कि अपने दिल को भाड़ में डालो और सारी बातें जाके अपने माँ बाप को बता दो।
हाँ, उस वक्त यही भाड़ एक आग का तूफान बनेगी और मैं उसमें जलकर राख हो जाऊंगा। इस वक्त ये बातें मत करो।
मुझे पता ये क्या करेगी। आज पैसे ले रही है, बस एक साल की बात है, एक साल के बाद वो फिर तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। अभी जो पैसे दे रहे हो वो सब बर्बाद हो जाएंगे।
क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो? और कोई हल नहीं है कि मैं इस पे इत्मीनान करूं। अगर बकौल तुम्हारे वो एक साल बाद फिर मेरे पीछे आएगी, उस वक्त कुछ और सोचूंगा।
उस वक्त फिर कोई और हल नहीं होगा मसूद, क्योंकि 20 मिलियन तो वो उस वक्त तक उड़ा चुकी होगी।
खत्म करो ये सब बातें।
खुदा करे नहीं आए वो। खुदा करे एक्सीडेंट हो और वो मारी जाए।
एक मिनट बाहर आओ, सारा काम है।
ये लो जो पैसे चाहती थी, मैंने चेक बना दिया है। कम अज कम एक नजर देख तो लो। कागजात मुझे दो।
वो तो नहीं लाई मैं।
क्या मतलब फरीदा, हमने अच्छी तरह तय किया था कि यहां पर आकर मिलेंगे और फिर तुम फिर पुरानी आदत पर पलट गई हो।
अभी हम तलाक नहीं ले सकते।
सब्र करो जरा। क्या महज ज्यादा करने का सोच रही हो? हाँ, इतनी देर से यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा हूँ और तुम आकर ये कह रही हो? हाँ, शादी को मजाक बना लिया है तुमने।
मैं हम लोग इसलिए भी हमारी तलाक नहीं हो सकती।
ये नया खेल शुरू कर दिया? हाँ
हाँ, मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। ये देखो, मजबूर तो हमें सबर करना पड़ेगा। मुझे पता है बात में अच्छी नहीं लग रही
जनाब। आप जाइए, ये अभी नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो रोज मैं ऐसी जगह तलाश करता हूँ वहाँ बच्चे को जाया करता हूँ।
क्या करूँ?
एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे लिए कोई मुश्किल ना हो।
मैं बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ।
वो तुम्हारा नहीं मेरा बच्चा है, समझी? तुम मेरा बच्चा है।
वो बच्चा हम दोनों का है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ। एक काम करो, जरा सब्र करो, उस बच्चे को दुनिया में आ जाने दो और उसका शनाख्ती कार्ड बन जाने दो, उसके बाद मैं और वो बच्चा दोनों तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चले जाएंगे। ये पैसे तो तुम मुझे दे रहे हो, मैं लेके चली जाऊंगी।
मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा इस बच्चे की दुनिया में आने की बात की तो मैं तुम्हारी जिंदगी,
क्या
समझी? मैं तुमसे बचा नहीं चाहता फरीदा, मैं और तुम अलग हो रही है, कोई वजह नहीं है कि ये बच्चा तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी से जुड़े, समझी क्या कह रहा हूँ? हाँ, बच्चे को गिराना होगा, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका फैसला करूंगा, तुम्हारा कोई हक नहीं। अभी क्या शरारत है कि इस बच्चे को गिरा दे? मैं इस बच्चे को गिराने के लिए कुछ भी करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। इसी वक्त फैसला करो, तुम नहीं कर सकती हो तो मैं करके दिखाऊंगा।
मसूद ऊपर तुम्हारा इंतजार हो रहा है, नीचे क्यों आ गए? चलो जल्दी
जाओ, उनसे कहो कि परसों आएंगे। बोलो परसों उसी वक्त आएंगे, एक दिन भी इधर उधर नहीं होगा। अब जाओ ना यहां से। जल्द वापस आऊंगा, जगह ढूंढकर इसका खात्मा करने के लिए। पैसों की फिक्र मत करो, 200 मिलियन से कुछ भी कम नहीं होगा, समझी क्या कह रहा हूं मैं? समझी तुम? जाओ, और पूछना नहीं जब बोला। शायद अब भूल गई, आपने किराया नहीं दिया। शर्मा, अपने पैसे तो वापस ले लें आप,
बाकी आप रख लो, कोई बात नहीं। तुम अपने दादा के पास जा रहे हो, वो तुम्हारे बाप की तरह नहीं है, अच्छे हैं, और मर्दों की तरह नहीं चलकर चली जा रही। सलाम।
वालेकुम सलाम।
माफ कीजिएगा, मुझे आकर सरमत से मिलना है।
जी, मगर आप कौन?
वो मुझे नहीं जानते। हमसे कहिए कि आका मसूद की तरफ से आई हूँ, बहुत जरूरी काम है।
सलाम बेटी, मुझसे कोई काम? बेटा
सलाम।
वालेकुम सलाम, मुझसे कोई काम है?
जी
हाँ, बोलो।
माफ कीजिएगा, मेरी बात जरा लंबी है और प्राइवेट भी है।
हाथ पर अंदर आ जाओ। बैठ जाओ बेटा।
मैं
بھلو کیا خدمت کروں؟ آغا عزیز نے کہا تھا کہ مسعود کی طرف سے آئی ہے، کوئی کام ہے.
آغا عزیز کون؟
ارے وہی جو باہر بیٹھے تھے.
اوہ اچھا، وہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے.
خیریت تو ہے؟
نہیں آجی صاحب، اس وقت خیریت نہیں ہے، بہت مشکل میں ہوں.
خدا نہ کرے. مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟
کیا کہوں حاجی صاحب، میں بڑی مجبور ہو کے یہاں پر آئی ہوں. یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت ہمت سے کام لیا ہے میں نے. آپ میرے لیے امید کی آخری کرن ہے. حاجی صاحب خدا کا واسطہ میری مدد کیجیے، میری فریاد کو سن لیں آپ.
یقیناً مدد کروں گا، لیکن سکون سے رہو اور صحیح طرح بیان کرو. مسئلہ کیا ہے؟ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟
آپ کے پاس میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کسی طرح سے روک لیں. آپ اسے روک لیں.
کس کو روک لوں بیٹا؟
اپنے بیٹے کو، میں اکیلی اسے نہیں روک سکتی.
سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ کیا ہے. لگتا ہے غلطی سے یہاں آ گئی ہو. تمہیں کسی اور جگہ جانا تھا شاید.
نہیں آغا صاحب، میں غلط نہیں ہوں. مسعود آپ کا بیٹا، میرا شوہر ہے.
اب تو یقین ہے غلطی سے یہاں آئی ہو. تمہارا شوہر کوئی اور مسعود ہوگا، میرے مسعود کی بیوی تو ابھی حال ہی میں فوت ہوئی ہے.
مجھے پتا ہے حاجی صاحب، خدا معصومہ خانم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میری اور مسعود کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، شرعی اور رسمی طور پر، لیکن خفیہ. حالانکہ اب معصومہ نہیں ہے، مسعود چاہتا ہے کہ میں بھی نہ رہوں، مجھے طلاق دینا چاہتا ہے. میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ اسے منع کریں. میں بھی اس کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن بچہ تو چاہتی ہوں.
بند کرو یہ بکواس محترمہ. میں نہیں جانتا کہ تم کون اور کیا چاہتی ہو، لیکن یقین رکھنا یہ سب تہمتیں میرے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہاں کیوں آئی ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟
میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں واقعی مسعود کی بیوی ہوں. اس کا نام میری شناختی کارڈ میں بھی ہے، نکاح نامہ بھی ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گی آپ کو. حاجی صاحب میں آپ کی بہو ہوں، پھنس گئی ہوں میں، نہ آگے جا سکتی ہوں اور نہ ہی پیچھے. میں آپ کے پاس پناہ کے لیے آئی ہوں کہ آپ میری مدد کیجیے اور اپنی بیٹی کو روکتی ہوں، اس سے میرا بچہ نہ چھینتے.
کتنے مہینے کا مسعود؟ تم سے پوچھ رہا ہوں کتنے مہینے کا؟
پتا نہیں،
اس کو نہیں پتا، لیکن زیادہ مہینے کا نہیں ہوگا. کب لے کے جاؤ گے؟ تمہارے گھر. دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ کام جلدی ہونا چاہیے، احتیاط اور تمیز کے ساتھ، سمجھی تم؟ ویسے کہ تم بالکل فکر نہیں کرو. ٹھیک ہے، کل صبح 8 بجے ہم تمہارے گھر پہ ہوں گے. صحیح ہے.
ڈاکٹر ہے؟
کون؟
کوئی یار دوست ہے یا کون ہے؟
نہیں بابا، یہ تو صرف ریفرنس ہے، سر کام تو ڈاکٹر صاحبہ ہی کریں گے.
دیکھو کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو فریدہ کے مسئلے کی وجہ سے ہم پھنس جائیں.
ایسی باتیں مت سوچو تم، جس کے پاس لے کر جا رہا ہوں وہ ڈاکٹر ہی ہے، لیکن صرف اس کا لائسنس کینسل ہو چکا ہے.
हेलो, सलाम हाजी आगा।
कहाँ?
सड़क पर।
तुम एक लड़की जिसका नाम फरीद अली पूरे जानते हो।
कौन?
फरीदा अलीपुर।
अलीपुर? क्या हमारी कोई जानने वाली है क्या?
यानी नहीं जानते?
पता नहीं वाला क्या कहूँ। कम से कम ये तो बताइए कि उसका नाम किसे सुना, शायद याद आ जाए।
उसने अपना नाम खुद बताया है।
खुद बताया? अच्छा, तो अब क्या कह रही है?
अभी यही है खाना मलिकपुर। कह रही है 2 साल से तुम्हारी बीवी और मेरी बहू है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।
जी जी
मसूद।
बाबा मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, अभी बात नहीं कर सकता।
खुदा की पना।
ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल मना है जनाब।
इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है भाई।
अच्छा जी, तबीयत खराब है तो फिर गाड़ी क्यों चला रही है?
इसकी तबीयत अभी अभी खराब हुई है टेलीफोन पे एक बुरी खबर सुनने के बाद।
ये कानून की खिलाफ वर्जी है, गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खतरनाक हो सकता है।
जी बिल्कुल जनाब।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
की कसम क्या कहूं, अजीबो गरीब हरकत की है उसने। हाजी साहब गुस्से में थे, आखिर क्या सोच के वो तुम्हारे बाबा के पास गई है? कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारे फायदे की बात है। कल हम दोनों अदालत चलेंगे, इसको नशे साबित करेंगे और तुम 3 तलाकें देना और उसके बाद उसके हाथ एक टका भी नहीं देना। क्या बेवकूफी कर दी है?
वो कह रही थी कि बच्चा रखना चाहती है, आज अदालत में उसने मुझसे ये कहा है।
यानी कि वो 200 मिलियन का बच्चा उसे चाहिए? अगर वो इस तरह कर रही है तो ये उसकी दूसरी बड़ी बेवकूफी है।
क्या करूं हामिद, मेरी सोच मेरा साथ नहीं दे रही।
अब कुछ नहीं हो सकता दोस्त, जो होना था हो गया। उसे तलाक दो और चंद माह के लिए मेरे घर आ जाओ ताकि हाजी साहब और तुम्हारी मामा परेशान हो जाए। उसके कुछ अरसे के बाद तुम उनके पास जाना, उनके हाथ पैर छूना, उनके गले लगना और कहना मुझसे गलती हो गई थी और वो यकीनन तुमको माफ कर देंगे। ये हरकत तो उसने तुम्हारे फायदे के लिए की है।
तुम नहीं समझते हमें, तुम नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। वो खुद कह रही है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ, अब क्या करूँ मैं? तो तबाह हो जाऊंगा।
फोन करो और पूछो कि ये सब क्या किया उसने।
फोन किया था मैंने लेकिन फोन बंद है।
हाजी साहब मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं मजबूर ना होती तो कभी भी आपके पास ना आती। मैं आपको गुस्सा दिलाना नहीं चाहती। मैं जिंदगी में पहली बार आपको देख रही हूँ। नरजिस खानम को अभी तक नहीं देखा लेकिन आप यकीन कीजिए मैं आप दोनों को बेहद पसंद करती हूँ। मेरे लिए आप दोनों बहुत अजीम हैं, खुदा की कसम। अगर ये बच्चा हमारे दरमियान ना होता तो शायद मैं आपको कभी भी तकलीफ ना देती।
हमसे छुपके क्यों रही 2 साल तक?
मसूद ये चाहता था, वो बहुत शर्मिंदा था आपसे भी और मासूमा से भी।
आज शर्मिंदगी खत्म हुई? तुमने कहा तलाक लेना चाहती हूँ मगर क्यों? मसूद के साथ क्या मसला है?
ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उसका दिल दिखाया है, मुझसे कहता है कि मेरा दिल भर गया है, मैं भी अब उसको नहीं चाहती।
मसूद, तुम मासूमा को राजी कर सकते हो? मेरी और अपनी माँ की इजाजत लिए बगैर उसने तुमसे दायमी अहद कैसे कर लिया? और ठीक दो साल बाद जब मासूमा का भी इंतकाल हो गया तो तुमको भी तलाक देना चाहता है? क्यों, मुझे सच बात बताओ लड़की।
मैं और मसूद एक बंद करी में खड़े हैं।
इसकी वजह पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्यों बंद गली में खड़ी हो?
मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं मसूद को नहीं चाहती और ना ही अब वो मुझे। आप ये जाने की कोशिश ना करें ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ मेरी ये मदद करते हैं कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। मैं सिर्फ इसलिए आपके पास आई हूँ। मैं चलती हूँ।
फरीदा खानम, मसूद की माँ मासूमा को बेहद चाहती है, अभी भी वो गम से निढाल है, बस एक मेहरबानी करना मुझ पर, ऐसा कुछ न करना कि वो समझ जाए। मैं खुद उनको बता दूंगा जब मैं जरूरी समझूंगा।
ठीक है, आप मुतमईन रहे, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
अपना नंबर दो ताकि मैं तुमसे रابطہ तो कर सकूं। खास कर
ठीक है, खुदा हाफिज़। सिर्फ एक बात और, आज जो मैं अदालत में मसूद से मिली और मैंने उसको बताया कि मैं हामला हूँ तो वो तो गुस्से से पागल और दीवाना हो गया, और जब उसे पता चलेगा कि मैं आपके पास आई हूँ तो और खफा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप उसे प्यार से बिठा कर समझाएं और उसे कहें कि बेटा आराम से रहो। मैं उससे बहुत डरती हूँ, बहुत ज्यादा।
परेशान ना हो बेटा।
खुदा हाफिज।
Oh boy.